దశదశయ చావదీహిరం పడమజినం వోక్షమ్నమి ఊణంతరం అనంతరుత్తుంగ సన్నమై దుగ్గేజం. యహ శ్రీ వీర్సేన్ ఆచార్య రచిత ధౌలా టీకా హై జో షట్ఖండాగమ గ్రంథ పర్ లిఖి హై జిస్కే కర్తా హై పుష్పదంత ఔర్ భూతబలి ఆచార్య ఔర్ జిన్హోనే శ్రీ దర్శన్ ఆచార్య కే ఉపదేశ్ కే అనుసార్ ఇస్కీ రచనా కీ హై जो उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है. अब ये पांचवी पुस्तक में अंतरानुगम का अपना विषय चल रहा है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 174 पर आ गए. उसमें हम आहार मार्गणा की बात देख रहे थे, आहारकों की बात हमने मिथ्या दृष्टि सासाधन सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात देखी थी. अब असंयत सम्य दृष्टि से लेकर आगे की बात कहेंगे यहाँ इस सूत्र में. पढ़ते ऊपर सूत्र, असंजद सम्मादिट्ठि पहुड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम. असंयत सम्य दृष्टि से लेकर ये आहारक की बात चल रही, अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक आहारक जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि हमेशा ये गुणस्थान पाए जाएंगे. यह सूत्र सुगम है. अब 175 पृष्ठ पर आए हम. एक जीवम पड़ुच्च जघन्येन अंतोमुत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी किसी दूसरे गुणस्थान में जावे और अंतर्मूर्त में वापस लौट के आएंगे उसी गुणस्थान में, क्योंकि विवक्षित गुणस्थान से अन्य गुणस्थान को जाकर और सर्व जघन्य काल से लौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के जघन्य अंतर पाया जाता है. यह विवक्षित यानी असंयत की बात चल रही है, तो असंयत गुणस्थान छोड़कर अन्य गुणस्थान में जावे और वापस लौटे तो इसका जघन्य काल एक जीव की अपेक्षा. उक्कस से न, ये सब में लिया एक साथ, असंयत से लेकर अप्रमत्त तक, यानी जिस गुणस्थान की बात होगी इसलिए विवक्षित शब्द डाला. उक्कस से न अंगुलस्य असंख्येज यदि भागो असंख्येज जाओ ओसप्पिनी उत्सप्पिनी हो. उक्त असंयत आदि चार गुणस्थान वर्ती आहारक जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल है. ये हमने कल भी देखा था कैसे घटित होता है, वो फिर दोबारा बहुत बताएंगे. यहाँ आहारक असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं. अभी हर एक की अलग अलग बात करेंगे. मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि तू का ध्रुव करना जीव विग्रह करके देवों में उत्पन्न हुआ. विग्रह इसलिए कहा क्योंकि इसके आगे वो रुजुगति वाला ही रहेगा दो भवों के बीच में, तो उसका आहारक 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 कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसलिए पहले विग्रह गति वाला पहले ले लिया. अब आहारक वाले ने रुजुगति सहित ही मरेगा हर बार, यानी अन्यत्र जो उत्पन्न करना है रुजुगति सहित जाएगा विग्रह गति में, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग पॉइंट में विग्रह गति से आया हुआ लिया, तो देवों में उत्पन्न हुआ. छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ. पीछे मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। ये चार अंतर्मूर्त में वो सम्यक दर्शन का भी एक अंतर्मूर्त। मिथ्यात्व में जाने पर असंयत का उसका अंतर चालू हो गया। अब मिथ्यात्व के साथ आहारक कितने काल तक रहेगा अधिक से अधिक, उसकी बात लेंगे। यानी आहारक की उत्कृष्ट स्थिति वहां बताएंगे। मोह कर्म के 28 ये हो गया। पीछे मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। अब कितना परिभ्रमण करेगा देखो। अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ये पहले हमने अंगुल वाली बात देखी थी। जितने वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आता है उतने ही वर्ग स्थान आगे चले जाओ, पल्ले का वर्ग का वर्ग का वर्ग, तब अंगुल आता है। अंगुल का असंख्यातवा भाग वाला जो असंख्यात है, क्योंकि असंख्यात के बहुत सारे भेद है, तो यहाँ कौन सा असंख्यात समझना उसके लिए अंगुल का असंख्यात वाला असंख्यात यहाँ समझाया। तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, यहाँ तो अकेले अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक लिखा है, परंतु ऊपर जो सूत्र में लिखा था उन्होंने अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, ये समझना चाहिए। यानी उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, परंतु हमें समझने के लिए अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण उत्सर्पिणी अवसर्पिणी या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की बात है। काल तक परिभ्रमण करके यानी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी ये हम समझ लेना उसमें। इतना काल तक परिभ्रमण करके अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। दोबारा चौथे में लाना है तो इतना काल भ्रमण किया है तो फिर औपशमिक समय दृष्टि होगा। इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में छह अवलिया अवशिष्ट रह जाने पर सासादन में जाकर विग्रह को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम, ये आहारक वाला है, अब वो अनाहारक बनेगा क्योंकि आहारक की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण हुई, इसलिए अभी अनाहारक बनने के लिए वो विग्रह वाली गति से जाएगा, मोड वाली गति से। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम आहारक काल ही, आहारक काल में से पांच अंतर्मूर्त घटाए, पहले चार अंतर्मूर्त सम्यक तो प्राप्त करने तक के, और अंतिम जो है फिर दोबारा उपशम सम्यक्त प्राप्त होने के पश्चात वाला उपशम सम्यक्त के काल में छह अवली बाकी है, तब सासादन में जाएगा। यह असंयत समय दृष्टि जीव का यानी आहारक असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब एक एक गुणस्थान पर ऐसे घटाएंगे। अब पांचवे की बात करते हैं। आहारक संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छिमों में उत्पन्न हुआ। वहां देवों में लिया था पहले में पहले। छह अभी यहाँ क्यों तीरंज लिया? पांचवे गुणस्थान की बात है, देवों में तो चौथा ही हो सकता है, तो और देव अर्लीस्ट हमको चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद हो, इसलिए देवों को पहले लिया था। अब देवों में तो पांचवा हो नहीं सकता, इसलिए मनुष्य और तीरंज को दो ही ऑप्शन है, तो मनुष्यों में तो 8 वर्ष बिताने पड़ेंगे, इसलिए तीरंज को लिया। गर्भज तीरंजों में भी वो 48 दिन की बात आती है, इसलिए समूर्छिन तीरंज लिया जो एक अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करे, परंतु वो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा, इसके लिए वो मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला लिया। तो मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके क्योंकि अभी वो अनाहारक है, अभी इसके पश्चात आहारक ही रहेगा उत्कृष्ट काल तक, तो विग्रह करके संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छिमों में उत्पन्न हुआ। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त और संयमासंयम को एक साथ प्राप्त हुआ। सम्यक्त के साथ पांचवा गुणस्थान हुआ उसका। ये समूर्छ मन में होता है कि नहीं होता, ये बात आई थी ना, उसके लिए ये भी रेफरेंस है। पहले हमने देखा था समूर्छ मन की बात, हमने पहले देखी थी 155 पेज पर कुछ ऐसे ही थी ना। एक सौ पचपन पर नहीं, हाँ 118, 119 और ये 176 पर भी यही बात आई। यानी एक अंतर्मूर्त में वो संयमासंयम को भी प्राप्त होते हैं। अब ये पांच अंतर्मूर्त हो गए, नहीं प्राप्त हुआ तो चौथा, उसमें एक अंतर्मूर्त तक रहेंगे। प्राप्त होने के लिए चार अंतर्मूर्त, फिर संयमासंयम के साथ एक अंतर्मूर्त तक रहेंगे, फिर वहां से गिरेंगे। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, अंगुल को के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक परिभ्रमण कर, अंत में प्रथमोपशम सम्यक्त्व और संयमासंयम को एक साथ प्राप्त हुआ। क्योंकि इतना काल मिथ्यात्व के साथ भटकने के बाद वो प्रकृतियों तो अभी नष्ट हो गई उनकी, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पश्चात उपशम सम्यक्त्व के काल में छह अवली अवशेष रहने पर सासाधन को जाकर विग्रह को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त होने के पश्चात वाला काल कम से कम हो, इसलिए उपशम का काल पूरा नहीं लिया, सासाधन वो भी छह अवली वाला लिया। तो सासाधन में जाने के बाद वो मरकर विग्रह गति से अन्य गति में चला गया। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम आहारक काल ही आहारक संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अभी स्टार्टिंग में ही पांच लिए, क्योंकि संयता संयत प्राप्त करने के लिए चार अंतर्मूर्त लगे थे, तो संयता संयत में एक अंतर्मूर्त तक रहेंगे ना, और जब मिथ्यात्व में जाएंगे तब अंतर चालू हो जाएगा। तो पांच अंतर्मूर्त पहले ही लिए, और जब अंतर समाप्त हुआ वहां भी एक मिथ्यात्व, वहां भी एक अंतर्मूर्त है। देखो देखो, छह पर्याप्तियों पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, तीन अंतर्मूर्त हो गए। वेदक समय तो संयमासंयम को प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ तो वहां काल भी बिताएगा ना कि नहीं। विशुद्ध हो, संयम को प्राप्त हुआ, अच्छा वो प्राप्त हुआ है ना, उसमें रहा वो एक अंतर्मूर्त तक। अच्छा अंतिम लेना है पांचवा जो है अंतर्मूर्त, वो अंतिम लेना, ठीक है। अब आहारक प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। आपका ऐसा प्रश्न है, 28 प्रकृति की जो सत्ता है, सादी मिथ्या दृष्टि है, यानी दर्शन होने की तीन प्रकृति उनके पास, तो क्या वो मिथ्यात्व में से पांचवे में जा सकता है, ऐसा प्रश्न है ना आपका। हाँ, मिथ्यात्व में से या तो चौथे में जा सकता है, पांचवे में जा सकता है, सातवे में भी जा सकता है, क्योंकि वहां क्षयोपशम होता है, सम्यक प्रकृति का उदय और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का भी वहां और बने रहते, वहां अनुदय ने किस प्रकार का अप्रशस्त उपशम कहेंगे उसको। अभी प्रमत्त संयत की बात करेंगे। अब वहां तो तिर्यंच लिया था संयता संयत में, अब मनुष्य ही लेना पड़े। तो मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। विग्रह करके बात तो सर्वत्र रखी थी, चौथे के लिए देवों में लिया था, पांचवे के लिए समूर्छिम तिर्यंच लिया था, अब प्रमत्त अप्रमति की बात है तो ये मनुष्यों में उत्पन्न कराएंगे। गर्भ को आदि ले 8 वर्षों से अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत हो, मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके अंत में प्रमत्त संयत हुआ। ये अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण सर्वत्र वो उत्सर्पिणी उत्सर्पिणियों का प्रमाण है, ऐसा बराबर समझ लेना। शॉर्ट में लिखा इसलिए वो अंगुल का असंख्यात भाग ही नहीं समझ लेना उसको, उतने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। अंत में प्रमत्त सहित हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। तो प्रमत्त होने के लिए वो अप्रमत्त होकर प्रमत्त हुआ ये समझ लेना, क्योंकि अभी हम सियान है ना, तो ये सब हर डिटेल नहीं बताएंगे। तो वहां आने के लिए जो आवश्यक है वो सातवें में जाकर वो आया है छठे में। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, छठे में आने के आते ही अंतर समाप्त हुआ। पहले छठे को छोड़ा था, अब छठे को प्राप्त हुआ, पश्चात मरण करके विग्रह गति को प्राप्त हुआ। यानी प्रमत्त संयत में आने पर एक समय भी में मरे, उसके बाद में कुछ काल की आवश्यकता नहीं है एक अंतर्मूर्ति। जैसे वहां उपशम सम्यक्त में आया था, तो उपशम सम्यक्त में तो मरण नहीं होता है, तो फिर सासाधन में गया और वहां सासाधन में मर गया था। तो यहाँ प्रमत्त संयत में आया नहीं, फिर भी यहाँ भी औपशमिक सम्यक के साथ आएगा ना। अंतर लब्ध हुआ, वहां भी एक अंतर्मूर्त रखा उन्होंने, ये जो तीसरा वाला अंतर्मूर्त है, क्योंकि औपशमिक सम्यक का काल वहां भी गिनना पड़ेगा। तीन अंतर्मूर्त और आठ वर्षों से कम आहारक काल ही आहारक प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। यह मनुष्य इसलिए आठ वर्षों की बात लिया। आहारक अप्रमत्त संयत का भी अंतर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत होकर अंतर को प्राप्त हो, अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अप्रमत्त संयत हो, पुनः प्रमत्त संयत हुआ, पश्चात मरण करके विग्रह को प्राप्त हुआ। पहले वाला एक अंतर्मूर्त और बाद में दो अंतर्मूर्त, इस प्रकार तीन अंतर्मूर्तों से कम आहारक काल ही आहारक अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अब आहारक उपशामक बताएंगे। चदुन्नम उवसामगाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च ओगभंगो। आहारक चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका अर्थ पहले बहुत बार कहा जा चुका है। तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर कितना है, हाँ, और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व। एक जीवम पड़ुच्च जघन्येन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। जघन्य अंतर हमने देखा था, आठवें का जघन्य अंतर श्रेणी चढ़ के वापस लौटेगा, क्योंकि आहारक है ना, वो तो आहारक ही रहेगा। अब उक्त से न अंगुलस्य असंख्य यदि भागो असंख्येज्जा संख्येज्जाओ उसप्पिनी उसप्पिनी। आहारक चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। ये जो अंगुल का असंख्यातवा भाग है वो असंख्याता संख्यात होता है। असंख्यात के मुख्य तीन भेद हमने देखे थे, कौन से, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। तो परिता संख्यात को परिता संख्यात बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे, यानी परिता संख्यात का घातांक परिता संख्यात करेंगे जघन्य का, तो युक्ता संख्यात बात आती है। तो युक्ता संख्यात एक काहे का प्रमाण है मालूम है ना, आवली का। एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। जघन्य युक्ता संख्यात का एक बार वर्ग करेंगे, यानी आवली का वर्ग करेंगे, तो जघन्य असंख्याता संख्यात शुरू हो जाता है, और आगे उसके वर्ग 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 करते रहो। तो हमने देखा था कि आवली से आगे असंख्यात स्थान जाने पर तो पल्ल्य आता है, और पल्ल्य के आगे उतने ही स्थान जाने पर अंगुल आता है। यानी अंगुल ये जो प्रमाण है वो असंख्यात असंख्यात वाला कोई मध्यम भेद है, ये तो जाहिर हुआ ना। तो उसका असंख्यात वाला भाग भी वो असंख्यात असंख्यात वाला भेद है, यानी वो युक्ता संख्यात या परिता संख्यात नहीं है, असंख्यात संख्यात है। तो अंगुल का वो तो बहुत हाँ। ये तो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी ये असंख्यात में आ गए, वो अनंत में आता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल बहुत बड़ा है। इतना कहने मात्र से उन्होंने वो बाकी रूल आउट कर दिए सब, यानी छोटे वाले असंख्यात नहीं हो गए, ये तो उसमें से रूल आउट कर दिया। इसलिए असंख्यात असंख्यात वो सब पिनी उस पिनी कहा। देखो नीचे उसका अर्थ करते हैं। आहारक चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है। वही जो आहारक का उत्कृष्ट काल है उसी को लिया है। आहारक यानी विग्रह करके आहारक में उत्पन्न हुआ। अब आहारक 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 पने से रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, तो ये असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। तो स्टार्टिंग में वो उपशामक हुआ, उसके लिए जो कितना आवश्यक काल है वो पहले बता देंगे, फिर जाके अंत में फिर उपशम श्रेणी मान लेंगे, और उसके पश्चात जो रिमेनिंग काल है वो भी बताएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्रह करके, क्योंकि अनाहारक की पश्चात आहारक की अभी शुरू होने वाली है मार्गणा, विग्रह करके मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। क्योंकि उपशम श्रेणी की बात करनी है ना, अभी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। 8 वर्ष का होकर सम्यक्त्व को और अप्रमत्त भाव के साथ संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके दर्शन मुनि का उपशमन कर यानी द्वितीय उपशम प्राप्त करके प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके पश्चात अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांपराय करो, उसको समांपराय हुआ है सांपराय, मां निकाल देना और स का सा करना, समा के बदले सा करो उसको, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय होकर फिर भी गिरता हुआ, ये गैप छूट गई है, फिर भी गिरता हुआ सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण हुआ। यानी अभी जब अभी श्रेणी से नीचे उतरेंगे तो अंतर चालू हो जाएगा, पुनः नीचे उतर कर अंतर को प्राप्त हो अंगुल के असंख्यात विभाग काल प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ तत्पश्चात, अभी पश्चात जल्दी से जल्दी मरे तो बाद का काल कम हो जाए ना, तो अपूर्वकरण के पहले भाग में तो नहीं मर सकता, इसलिए क्या कहेंगे, तत्पश्चात निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियों के बंध से विच्छिन्न होने पर, यानी पहला भाग समाप्त तो होते ही, क्योंकि बंध की विच्छित्ति वहां पर होती है, मरकर विग्रह को प्राप्त हुआ। तो विग्रह करके कहां उत्पन्न हो गए, देव में उपशम श्रेणी में मरने वाले। इस प्रकार 8 वर्ष और 12 अंतर्मूर्तों से कम, पहले वाले 11 और ये 8वें का पहला भाग, 8 वर्ष और 12 अंतर्मूर्तों से कम आहार काल ही अपूर्व कर्ण उपशामक का उत्कृष्ट अंतर है। ये कैसे डिराइव करते हैं उसके हमें एक बात ख्याल में आ जाएगी। उस ये अभी आहारक की बात चल रही है, तो आहारक का उत्कृष्ट काल कितना है, तो उसमें स्टार्टिंग में और एंड में उपशम श्रेणी मान लेंगे, तो उसके बाद में कितना कम करना पहले कितना कम करना वो बात अभी वो तो आसान है। बाकी
कोई
सभी चारों ही गति वाले रुजु गति से भी मरकर अन्य गति में जा सकते, विग्रह भी कर सकते। पहले हमने देखा था ना, जब ये सारे स्वस्थान स्वस्थान वगैरह बातें, हमने क्षेत्र की बात देखी थी, क्षेत्र और स्पर्शन में ये बातें बहुत डिटेल में ली थी हमने। वहां विग्रह करके जन्मने वाले और रुजु गति से उत्पन्न होने वाले, ज्यादा करके तो मेजोरिटी तो विग्रह वाले ही है, उसमें भी मारणांतिक करने वाले कितने ही जीव है, उसकी बात हमने पहले देखी थी। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए। ये हमने आठवें टू आठवें ऐसा देखा, उतर कर आठवें के बाद अंतर शुरू हुआ था, अब उतर कर नौवें के बाद अंतर चालू हो गया, और वहाँ आठवां पूरा करके नौवें में जाते ही अंतर समाप्त होगा, और नौवें में ही पहले समय में मर जाएगा एक समय में। विशेषता यह है कि आहारक काल में अनिवृत्ति उपशामक के 10, सूक्ष्म सांप्राय उपशामक के 9 और उपशांत कषाय उपशामक के 8 अंतर्मुहूर्त और एक समय कम करना चाहिए। एक समय वाला या उस गुणस्थान में जाते ही एक समय के बाद मरेगा, वो एक समय के लिए ना उसका। चदुन्नम खवानम ओगम, आहारक चारों क्षपकों का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र सुगम है। तो नाना जीव की अपेक्षा कितना अंतर है क्षपकों का, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने, और एक जीव की अपेक्षा क्षपकों का अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि वापस उस गुणस्थान में लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। सहयोगी केवली ओगम, आहारक सहयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र भी सुगम है। यह किस में अंतर पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा क्या, नाना जीव की अपेक्षा, निरंतर है। हाँ, निरंतर है। हाँ, समुद्घात में क्या होगा, मार्गना नष्ट हो जाएगी। आहारक रहते हुए उस गुणस्थान को बदल कर वापस आवे तो ही हम अंतर सिद्ध होगा। आहारक सहयोगी केवली का अंतर, यह सूत्र भी सुगम है। हाँ, अब अनाहारक, अनाहारा कम्मय काय योगी बंगो, अनाहारक जीवों का अंतर कार्मण काय योगियों के समान है। तो कार्मण काय योगियों में गुणस्थान कौन कौन से है, पहला, दूसरा, चौथा और तेरवा। चौदवा अनाहारक है परंतु कार्मण काय योग नहीं है। आगे बताते, क्योंकि ये विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं, वो कार्मण काय योग है। वहां भी मोड़ वाली गति से जाएंगे तो जितने मोड़ है उतने समय तक कार्मण काय योग है। एक मोड़ वाले को जाने के लिए 2 समय लगते हैं, तो पहले मोड़ तक कार्मण काय योग यानी अनाहारक, दूसरे समय में ही वहां भले वो जाने एक ही समय पहुंच जाता है और वहां जाकर मिश्र काय योग चालू हो जाता है। 2 मोड़ वाले को 2 समय तक कार्मण काय योग, और 3 मोड़ वाले को 3 समय तक कार्मण काय योग, और 4थे समय में वो मिश्र काय योग चालू हो जाता है। हाँ, क्या प्रश्न है, हाँ सर्वासी। ये नीचे जो फुटनोट्स है वे सभी रेफरेंसेस हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में जो उसके समान जो कुछ आता है रेफरेंस उसकी बात लिखी है वहां पर। अभी इसका अर्थ बता रहे, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से कार्मण काय योगियों में कार्मण काय योग चलता रहे या अनाहारक होता रहे। तो कितने समय तक रहेगा मिथ्या दृष्टि जो अनाहारक, 1 समय या 2 समय या 3 समय, तो उसमें क्या वो गुणस्थान पलटी करके वापस उसमें आएगा, नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा ही उसमें हो गई, विग्रह गति भी हर समय चलती रहेगी और अनेक अनंत जीव उसमें होगे मिथ्या दृष्टि, तो नाना जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं, और एक जीव की अपेक्षा भी गुणस्थान बदली हो उतने काल तक ऐसा भी नहीं, बदली होकर वापस भी आना चाहिए ना। तो मिथ्या दृष्टियों का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, अब सासाधन सम्यक दृष्टियों में क्या होगा, तो सासाधन सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्लोपम का असंख्यात भाग अंतरों से, अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कितना होगा सासाधन में, क्योंकि वो काल छोटा है ना, उसने काल में मिथ्यात्व में चला जावे परंतु वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं सासाधन में, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से। अब असंयत की बात करेंगे, असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय, देखो विग्रह गति में असंयत समय दृष्टियों में अंतर बता रहे, असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास पृथक्त्व अंतरों के द्वारा और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, एक जीव में तो चौथा गुणस्थान पलटी हुए वापस चौथा हुए ऐसी तो बात होती नहीं है, परंतु नाना जीवों में तो बीच में खंड पड़ सकता है एक समय से लेकर ये मास पृथक्त्व, और संयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक्त्व अंतर से, संयोगी केवलियों में भी कहाँ लगाना, ये समुद्घात में लगातार समुद्घात होता रहे, क्योंकि कारमाण का योग वाले लेने हैं ना, अनाहारक लेने हैं, तो लगातार अन्य अन्य केवली समुद्घात करते रहे तो बीच में अंतर पड़ जाए, तो मिनिमम जघन्य से जघन्य एक समय, और अधिक से अधिक अंतर पड़े नाना जीवों की अपेक्षा तो वर्ष पृथक्त्व अंतर है, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से दोनों में समानता पाई जाती है। ये समानता के बहाने उन्होंने हमें वो फिर रिवीजन करा दिया, अब अनाहारक जीवों में विशेषता प्रतिपादन करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, कारमाण का योगियों के साथ समानता क्या है वो तो बता दी, उसके साथ विशेषता क्या है उसकी बात करते हैं। नवरी विशेषा अजोगी केवली ओगम, किंतु विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, क्योंकि अनाहारक में अयोगी केवली गुणस्थान भी है और जो कारमाण का योग उसमें नहीं पाया जाता है, ये विशेषता है, बाकी अनाहारक जीव कारमाण का योगी उनके समान है एक्सेप्ट अयोगी है, तो वे थे ओग के समान अंतर है, यह सूत्र सुगम है। ओग में कितना अंतर देखा था, नाना जीव की अपेक्षा जघन्य एक समय और छह महीने, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। हाँ, इस प्रकार आहार मार्गणा समाप्त हुई, इस प्रकार अंतरानुगम अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अच्छा अंतिम बोल्ड नहीं चाहिए, एवं ऊपर भी उन्होंने बताया इसलिए वो नीचे भी डाल दिया। अब भावानुगम की बात यहाँ से आरंभ होती है, जीव के भावों की बात चलेगी विस्तार से, बहुत अच्छा प्रकरण है। पांच भाव, हाँ पांच भाव, उसके कॉम्बिनेशंस वगैरह बहुत सारी बातें आएगी इसके अंदर। ओम श्री भगवंत पुष्पदंत भूत बलि पणितो छखंडागमो श्री वीर सेनाय वीरय धवला टीका समन्वितो तस्य पढ़म खंडे जीवट ठाणे भावानुगम। हम मंगलाचरण करेंगे अभी। हाँ, अवगय शुद्ध भावे उवगय कम्मख उच्च भावे पणमीय सौवर हंते भावणियोगम परुवे मो। पहली लाइन में जो अंतिम शब्द है ना, उवगय कम्मख चौ भावे, चार भाव वो एक कर देना, चौ भाव, नहीं तो वहाँ ऐसा उच्च और उपभाव ऐसा दिखता है, वो चौ भाव शब्द होना चाहिए। अवगय अशुद्ध भावे, हम जैसे कहते हैं अपगत वेदी, वैसे अपगत कौन सा? अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव से जो अपगत हो गए, रहित हो गए। और उवगय कम्मक खव चव भावे, क्या उत्पन्न हुआ है? कर्म क्षय से चार भाव उत्पन्न हुए हैं। अरिहंतों की बात हो रही है। तो अशुद्ध भाव से रहित हुए हैं और चार भाव उत्पन्न हुए। कर्म के क्षय के कारण चार भाव उत्पन्न हुए, कौन से? हाँ, अनंत चतुष्टय जिसको हम कहते हैं। तो ये भावों की बात है ना, इसलिए वहां कर्म के क्षय से ऐसा बता दिया। और प्रणमीय सऊ अरहंते, ऐसे सभी अरिहंतों को प्रणाम करके भाव नियोगम परुवेमो, भाव नियोग या भाव अनुयोग की बात अभी बताऊंगा, ऐसे आचार्य यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। इसी का अर्थ नीचे दिया, देखिए, अशुद्ध भावों से रहित कर्मक्षय से प्राप्त हुए हैं चार अनंत भाव जिनको, ऐसे सर्व अरहंतों को प्रणाम करके भावानुयोग द्वार का प्ररूपण करते हैं। यह आसान है, इसका कुछ अर्थ बहुत गंभीर नहीं है। अब आगे यहाँ सूत्र शुरू हो जाएंगे। भावानुगमेण दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेण, प्रत्येक अनुयोग द्वार में हमने यही ऐसा ही दो प्रकार का निर्देश होता है, ओघ से और आदेश से, ऐसा हर अनुयोग द्वार में हमने देखा था। भावानुगम द्वार की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश का अर्थ होता है कथन, दो प्रकार से कथन आएगा, एक ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ यानी सामान्य कथन या गुणस्थानों का कथन, और आदेश यानी विशेष कथन या मार्गणाओं का कथन। तो मार्गणाओं में भी भाव बताएंगे या यहाँ गुणस्थानों में भी भाव बताएंगे। मार्गणाओं में तो विस्तार से हो गए उसके जो कुछ भंग। अब इसमें भाव चार प्रकार का बताएंगे, कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव भी भाव होगा उसमें, भाव पर भी भाव निक्षेप लगाएंगे। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की अपेक्षा भाव चार प्रकार का है। बाह्य अर्थ से निरपेक्ष अपने आप में प्रवृत्त भाव यह शब्द नाम भाव निक्षेप है। ये निक्षेपों की चर्चा हमने हर अनियोग में, हर पुस्तक में बहुत विस्तार से की थी। कोई किसी चीज का या किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं तो उसमें वो नाम के अर्थ वाले भाव उस व्यक्ति में होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। किसी का नाम हम महावीर रखे या अन्य भी कोई नाम रखे तो उसके महावीर के गुण उसमें हो, ऐसी नहीं। अरिहंत भी नाम रख देते हैं तो वे गुण उसमें होने ही चाहिए, ऐसी बात नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? बाह्य अर्थ से निरपेक्ष, अर्थ से निरपेक्ष, बस वो वस्तु को बुलाने के लिए, समझाने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं। और अपने आप में प्रवृत्त भाव यह शब्द नाम भाव निक्षेप है। किसी का हमने नाम लिया भाव, ऐसा लिख उसका नाम रखा तो ये भाव निक्षेप हुआ, ये नाम भाव निक्षेप हुआ। उन चार निक्षेपों में से स्थापना भाव निक्षेप सद्भाव और असद्भाव के भेद से दो प्रकार का है। इसी को दूसरे शब्दों में लिखना है तो तदाकार तदाकार ऐसे भी दो शब्द आए थे। यानी जो स्थापना भाव है वो दो प्रकार का, सद्भाव और असद्भाव। उनमें से विरागी और सरागी आदि भावों का अनुकरण करने वाली स्थापना सद्भाव स्थापना भाव निक्षेप है। यानी ये विरागी है, ऐसे भावों की हमने स्थापना की। जैसे मूर्ति में ये भगवान महावीर है ऐसी स्थापना करते हैं, उसको भी स्थापना निक्षेप कहा है। तभी ये वीतरागी भगवान है ऐसे हमने वो भावों की भी उसमें स्थापना की ना उसके साथ, ये भाव की स्थापना हुई उसमें। या किसी में हमने कोई वस्तु में ये रागी है ऐसा वस्तु में ही हमने स्थापना की, तो ये रागीपना का भाव की वहां स्थापना हो गई, ये सद्भाव स्थापना है। उससे विपरीत असद्भाव स्थापना भाव निक्षेप है। अभी ये तो इससे कोई आने वाला नहीं, हर में ये निक्षेप तो सर्वत्र लगेंगे, अपना जो है विषय जो चलेगा। वो नो आगम भाव में चलेगा आगे, मेरे रूटीन से ये सभी बताने वाले। अब जो हम द्रव्य निक्षेप लगाते हैं, भाव शब्द पर द्रव्य निक्षेप लगाना है, तो द्रव्य निक्षेप हमने पहले देखा था दो प्रकार का, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। जैसे मंगल शब्द पर हमने घटाया था तो हम कहते आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल, वैसे यहाँ क्या कहेंगे, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। आगे निक्षेप लिखो कोई बात नहीं, यानी आगम द्रव्य भाव निक्षेप और नो आगम द्रव्य भाव निक्षेप, ये द्रव्य निक्षेप की बात चल रही है। अभी देखो द्रव्य भाव निक्षेप आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। अब आगम द्रव्य निक्षेप हम किसको कहते हैं कि आगम को जानने वाला, अब यहां भाव पर सब घटा रहे हैं तो भाव संबंधी आगम का जानने वाला जो जीव है, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है उसका। अब यह भाव यानी हम पांच भाव की बात करेंगे, पांच भावों संबंधी आगम का जानने वाला जीव, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उस प्रावृत्त में नहीं है, आगम में नहीं है, अन्यत्र उपयोग है, उस जीव को हम आगम द्रव्य भाव कहेंगे। आगम द्रव्य मंगल कैसे लगाया था, अभी वो भाव लगाना, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। नो आगम यानी उसके शरीर को भी कहेंगे, ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त, उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से। हाँ।
जरा अरविंद भाई को समझाने के लिए फिर से बताना।
हाँ।
कि यहाँ आप तो पांच भावों को तो जानते हैं, यानी आगम का ज्ञान तो है आपको, लेकिन अभी उस पांच भावों के बारे में आप नहीं जान रहे, धंधे के बारे में कुछ कामकाज चल रहे, तो आपको उस वक्त क्या कहेंगे वो बात यहाँ बता दें। वहाँ लिखा है कि वहाँ आपको आगम द्रव्य भाव कहलाएंगे, ख्याल में? तो ये पहले दो तीन चार बार हो गए इसलिए जरा फास्ट ले रही है, लेकिन जब अपना उपयोग उसमें लगा है तो वह द्रव्य निक्षेप होगा, नहीं लगा है जानता तो है, और जब लगा है उसी चीज को तो वो भाव निक्षेप होगा। तो अभी यहाँ द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य और भाव चल रहे हैं ना, तो भाव का भाव आएगा जब भी आप उस पांच भाव को जानने में युक्त है ऐसा, और अभी आप जानते तो हैं लेकिन अभी आपका उपयोग कहीं और लगा है तो द्रव्य निक्षेप में आएगा।
हाँ। देखो किसी भी चीज पर द्रव्य निक्षेप जब घटाते हम, कोई वो मंगल की बात हो या अभी हमने पहले अंतर की भी बात की थी, तो द्रव्य निक्षेप में क्या है, तो आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप, ऐसे दो मूल भेद होते हैं उसमें। आगम द्रव्य निक्षेप में दो प्रकार से होता है, एक जिसको हम आगम कहते हैं द्रव्य श्रुत जो है वो भी आगम है, उसको भी आगम तो उपचार से कहते हैं, परंतु सच्चा आगम किसको कहते हैं, तो जानने वाले जीव को, क्योंकि ज्ञान है ना वो, तो ज्ञान को ही कहेंगे। तो ये जानने वाला जो जीव है, परंतु ये कैसा है, आगम संबंधी प्रावृत यानी शास्त्र को आगम को जानने वाला है, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, इसीलिए तो द्रव्य निक्षेप घटित होता है। वर्तमान उपयोग से सहित होगा तो भाव निक्षेप में जाता है। जैसे नयों में भी हम देखते ना वो एवं बुद्ध ने वो वर्तमान वो पर्याय सहित वाले को लेते, यह निक्षेप की बात चल रही। तो ये जानने वाला जीव परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित, ये आगम द्रव्य निक्षेप हुआ, तो इसको हम कहेंगे आगम द्रव्य भाव, भाव की बात चल रही। तो आगम द्रव्य भाव आगे निक्षेप लगाओ चलेगा। अब नो आगम की बात करेंगे, ये कैसा है, तो फिर इसमें एक है, तो एक भेद है ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव का शरीर, जानने वाला तो जीव है परंतु वो शरीर कैसा है, वो नो आगम है, तो उसको नो आगम द्रव्य भाव कहेंगे। भाव संबंधी शास्त्र के जानने वाले जीव का जो शरीर है, उस शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं, और उसको हम ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य भाव आगे निक्षेप लगाओ चले, भाव निक्षेप कहो, तो वो भाव निक्षेप वाला भाव निक्षेप नहीं है, ये द्रव्य निक्षेप की बात चली, द्रव्य भाव है ये। अब ये गायक शरीर के भी तीन भेद करते हैं, एक भूतकाल का गायक शरीर यानी जीव तो अभी का ज्ञाता है, परंतु भूतकाल में जो उसने शरीर धारण किया था वो भूतकाल का होगा, एक वर्तमान का शरीर है उसका, और एक भविष्य काल में अगले भव में जो धारण करेगा वो शरीर। तीनों को ही यहाँ गायक शरीर के ये तीन भेदों में ले लिया है। अब ये भावी नाम का जो भेद है, भावी नोआगम द्रव्य भाव, तो भावी में जीव लेना, परंतु वो अभी का ज्ञाता नहीं है, अभी वो आगम को नहीं जान रहा है, भाव संबंधी आगम का ज्ञाता नहीं है, परंतु यह जीव भविष्य में ज्ञाता होने वाला है, उस जीव को अभी वर्तमान में हम भावी नो आगम द्रव्य भाव कहेंगे। और तद व्यतिरिक्त इनके अलावा जो जीव भी नहीं है और वो क्या एक शरीर भी नहीं है, इनके अलावा और जो अन्य बातें हैं वो तद व्यतिरिक्त में जाएगी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पहले ही लाइन से हम पढ़ते हैं, यहाँ 184 पृष्ठ पर, भाव प्रावृत ज्ञायक यानी भाव प्रावृत यानी पांचों भाव जो है जीव के उस संबंधी जो शास्त्र है उसका जानने वाला जीव, तो भाव प्रावृत ज्ञायक किंतु वर्तमान में अनुपयुक्त, वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, उपयोग रहित यानी उस प्रावृत का उपयोग नहीं है, अन्यत्र उसका उपयोग चल रहा है, क्योंकि उपयोग के बिना तो जीव होगा नहीं, तो उसका उपयोग अन्यत्र लगा हुआ है, ऐसा जीव आगम द्रव्य भाव कहलाता है। ये तो अपने हमने देखा ना, ये आगम द्रव्य भाव हुआ, जो आगम द्रव्य भाव निक्षेप है, यानी अभी नो आगम की बात है, पहले आगम की बात कर दी, नो आगम की बात करेंगे, उसमें तीन भेद बताएंगे। तो नो आगम द्रव्य भाव निक्षेप है, वह भी गायक शरीर भव्य, भव्य कहो या भावी कहो की बात है, और तद व्यतिरिक्त भेद से तीन प्रकार का होता है, जो अभी हमने यहाँ देखे थे मूल तीन भेद, फिर गायक शरीर के भी तीन भेद करेंगे। भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव का एक लाइन रहेगी, तीसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ, उनमें नो आगम गायक शरीर द्रव्य भाव निक्षेप भव्य वर्तमान और समुज्जित, समुज्जित यानी भूतकाल का जो शरीर वो पहले छोड़कर आया ना, भव्य यानी भावी काल का, ये शरीरों की बात चल रही है, जानने वाले जीव के शरीर की बात चल रही है, जिसको ज्ञायक शरीर कहा है, शरीर ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक का शरीर है, तो ये भव्य यानी भविष्य काल वाला, वर्तमान अभी वाला और समुज्जित यानी भूतकाल का, इसके तीन भेद हैं। अब ये तीनों भेदों का जो अर्थ है वो समझाते हैं, भव्य किसको कहना, भव्य ज्ञायक शरीर किसको कहना, तो भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव के साथ, फिर एक लाइन रहेगी, भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव का जो शरीर आधार होगा वह भव्य शरीर है, होगा यानी वो भविष्य काल की बात करते, अभी वो शरीर नहीं है, भविष्य में जो होगा अगले भव की बात है, वो एक भेद हो गया। फिर भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव के साथ जो एकीभूत शरीर है की बात है, अभी वर्तमान का शरीर, वह वर्तमान शरीर है। अब पूर्व शरीर की बात करेंगे, भाव प्रावृत पर्याय से परिणत जीव के साथ एकत्व को प्राप्त होकर जो पृथक हुआ शरीर है यानी पूर्व भव का, तभी तो एकत्व को प्राप्त था, अभी वो पृथक हुआ है, वह समुज्जित शरीर है। ये तीन भेद ज्ञायक शरीर के ही हो गए। अब जो ये ज्ञायक शरीर के तीन हो गए ना, अब ये भावी कहो या इसका भी नाम भव्य कहो या भावी कहो, यहाँ जीव को लेना है, जो प्रावृत का ज्ञायक नहीं है परंतु भविष्य में जो जानने वाला होगा उसको यहाँ पर लेते हैं। तो भाव प्रावृत पर्याय रूप से जो जीव परिणत होगा वह नो आगम भव्य द्रव्य भाव निक्षेप है, ये बहुत सभी लंबी चौड़ी लाइन होती है ना नाम की, तो कन्फ्यूजन होता है। मूल में ये टेबल ख्याल में लेना, क्लासिफिकेशन जो है। अब तद व्यतिरिक्त वाला लेना है। तद व्यतिरिक्त अर्थ होता है इनके अलावा। हाँ, भाव प्रावृत पर्याय स्वरूप से जो जीव परिणत होगा, यानी जो जीव भविष्य काल में भाव प्रावृत को जानेगा, उस जीव को अभी वर्तमान में क्या कह रहे हैं, ये अपने टेबल में भव्य नो आगम द्रव्य भाव। अब तद व्यतिरिक्त की बात करेंगे। तद व्यतिरिक्त का अपने अपनी भाषा में अर्थ है इनके अलावा। पहली बात ज्ञात गायक शरीर के लिए, यानी जीव के शरीर की। दूसरी बात जीव के लिए जो भविष्य में जानने वाला है। अब इनके अलावा जो कुछ है वो वहाँ बताएंगे। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाव निक्षेप। अब उसके भेद करेंगे। सचित्त अचित्त करो उसको, आचित्त हुआ है, अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। ये जो तद व्यतिरिक्त वाले हैं उसके भी तीन भेद किए, सचित्त अचित्त और मिश्र। उनमें जीव द्रव्य सचित्त भाव है, चेतना वाला है ना वो सचित्त भाव। अब उसमें अचित्त यानी अजीव कौन से हो गए, अभी पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल और आकाश द्रव्य अचित्त भाव है। और कथनचित जात्यंतर भाव को, जात्यंतर यानी अन्य जाति, जात्यंतर यानी किसी अपेक्षा, जात्यंतर भाव को प्राप्त पुद्गल और जीव द्रव्यों का संयोग नो आगम मिश्र द्रव्य भाव निक्षेप है। एक तो सचित्त यानी जीव, अचित्त यानी अन्य पांच द्रव्य, और मिश्र में जीव और पुद्गलों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो कुछ वहाँ नो आगम मिश्र द्रव्य भाव निक्षेप लेना। ये उन द्रव्यों का संयोग इतना ही लेना, वहाँ जीव और पुद्गल द्रव्यों का संयोग वो मिश्र में लेना। अब शंकाकार क्या पूछ रहे, देखो द्रव्य के भाव ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है, यहाँ तद व्यतिरिक्त में भाव किसको कहा, द्रव्य को भाव कहा है। तो शंका अभी भाव की बात चल रही है ना, किस में चल रही है, अभी शाम को चल रहे हैं प्रवचन सार में, जो जीव जिस भाव रूप से परिणत होता है इसी बात चल रही है। वहां परिणत रूप होना यानी वो पर्याय को भाव कहा है, पर्याय को भाव कहते हैं, अपने स्वभाव से परिणत, स्वकस्य भाव से ऐसा वहां शब्द आया, यानी अपने भाव रूप परिणत होता है वो जीव, अपने भाव रूप से परिणत होता है। तो परिणत होता है वहां पर्याय की बात है, तो पर्याय को भी भाव कहते हैं, स्वभाव यानी गुण को भी भाव कहते हैं। तो शंकाकार की शंका है यहाँ द्रव्य को भाव क्यों कह रहे हो, क्योंकि जीव द्रव्य को सचित्त तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाव कहा, और पुद्गल आदि जो अचेतन द्रव्य है उन द्रव्यों को यहाँ भाव कहा है। तो शंकाकार की शंका है द्रव्य को यहाँ भाव क्यों कह रहे हो, ख्याल शंका ख्याल में आई। हाँ देखो उसका समाधान, नहीं क्योंकि भवनम भावः, भाव शब्द कैसे तैयार हुआ, तो भवन यानी होना, अथवा भूतिर्वा भावः, इस प्रकार भाव शब्द की व्युत्पत्ति के अवलंबन से द्रव्य के भी भाव ऐसा व्यपदेश बन जाता है। भाव शब्द कैसा तैयार होता है, उस भाव शब्द का अर्थ अगर हम समझे तो द्रव्य को भी यहाँ भाव कह सकते हैं, इसी बात है। तो हमने देखा है द्रव्य को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं। अब कहाँ कौन सा अर्थ है वो हमें बराबर समझना चाहिए। जब हम कहेंगे उस भाव रूप से परिणत होता हुआ जीव ऐसा कहेंगे तो वहाँ पर्याय की बात है। जब हम कहेंगे ये जीव के ज्ञान दर्शन आदि वो अनादि अनंत भाव है तो वहाँ गुण की बात है, और ये भाव स्वरूप ऐसा, ये जो भाव है ना जो स्वयं भाव स्वरूप है उसको भी भाव कहा, तो द्रव्य को ही भाव कहा है। बोल हाँ भवन को भाव कहा या भूति को भाव कहा? भूति वा यानी अथवा, वा का अर्थ होता अथवा भी होता है और भी होता है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो हर जगह वा का अर्थ और आया है। अब ये द्रव्य निक्षेप की बातें पूरी हुई, अब भाव निक्षेप। भाव शब्द पर भाव निक्षेप लगाएंगे तो भाव भाव कहना पड़ेगा। अब यहाँ तो हम द्रव्य भाव कहते ना, जो भाव नामक भाव निक्षेप है, जैसे द्रव्य निक्षेप में हम आगम और नो आगम भेद करते हैं, वैसे भाव निक्षेप में भी आगम और नो आगम भेद करेंगे। आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। द्रव्य निक्षेप में तो हमने क्या देखा था, आगम का ज्ञायक, वर्तमान में उपयोग से रहित। अब भाव निक्षेप में आगम का ज्ञायक, वर्तमान में उसी में उपयोग वाला चीज, उपयुक्त ऐसा कहेंगे, उपयोग से सहित। तो भाव प्रावृत का ज्ञायक और उपर्युक्त जीव, उपर्युक्त का उपयुक्त कहाँ गया, ऊपर कहाँ लिखा है देखो, उवजुत्तो, वो यू के ऊपर रफार नहीं चाहिए, उपयुक्तो चाहिए, उपयुक्त जीव। उपर्युक्त का क्या अर्थ होता है, उपयुक्त का क्या अर्थ होता है? हाँ अरविंद भाई आप तो कह सकेंगे, जिसको थोड़ा आप भी कह सकेंगे, भाषा संबंधी थोड़ा ज्ञान है ना, वो तो बता सकेंगे।
ऊपर माने अबव माने और उपयुक्त माने अंदर।
देखो देखो देख, हाँ उपरियुक्त, उपरियुक्त है ना ऊपर बताया हुआ, और उपयुक्त है ना उपयोग, उसमें जो है उपयोग सहित वाला, उपयुक्त उपयोग के साथ वाला, इसलिए यहाँ उपयुक्त करना इसको। मूल प्राकृत में उपजुत्त उवजुत्तो लिखा है ना ऊपर, नीचे से सेकंड लाइन में भाव पाउड़ जानो उवजुत्तो, उसमें जिसका उपयोग है वो है। उसको आगम भाव नामक भाव निक्षेप कहेंगे। आगम भाव है ना, आगम भाव, जैसे हमने आगम द्रव्य भाव ऐसा कहा था द्रव्य निक्षेप में। अब यहाँ भाव निक्षेप पर, भाव शब्द पर भाव निक्षेप लगाना है, तो आगम भाव भाव निक्षेप। अब नो आगम भाव में क्या लिखना है, नो आगम भाव भाव निक्षेप। आगम भाव में यानी वर्तमान ज्ञायक और उसी में उपयोग वाला जीव लिया। अब नो आगम में देखो, नो आगम भाव में क्या लेना, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक के भेद से पांच प्रकार का है। ये जो हम भेद देखने जाने वाले हैं वे कौन से, नो आगम भाव भाव निक्षेप है। द्रव्य भाव कहते हैं तब, अब यहाँ भाव भाव कहेंगे, भाव भाव निक्षेप। उनमें से कर्मोदय जनित भाव का नाम औदयिक है, ये निमित्त का कथन है, जनित यानी उन्होंने उत्पन्न नहीं कराया है, तो कर्मोदय जिसमें निमित्त है, ऐसे जो भाव है जीव के उनको औदयिक कहेंगे। भाव तो जीव में है और निमित्त कर्मों का बताया है, लिखा तो है कर्मोदय से जनित, परंतु मान लेते अभी हम क्षोभशम ज्ञान की बात करते हैं, तो वहाँ कर्मों का क्षोभशम चल रहा है और यहाँ जीव का क्षोभशम ज्ञान का उघाड़ है, तो जितना ज्ञान का उघाड़ है वो कर्मों ने उत्पन्न किया है कि वो जीव का अपना स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। भले आप औदयिक बात करेंगे, राग भी है वो जीव की अपनी पर्याय में उत्पन्न हुआ है, परंतु वहाँ यहाँ कर्मों का उदय है, चारित्रमों का उदय है, तो हम कहेंगे वो कर्मोदय से उत्पन्न हुआ भाव है। परंतु वहाँ हमें बराबर समझना चाहिए वो जीव का भाव है और उसमें निमित्त है वो कर्म का है। प्रवचन सार में उसको जीव का स्वभाव कहा है, राग को। अभी अभी बात आई थी ना अपनी गाथा हुई अभी, हाँ 186 उसमें बात चली थी, क्योंकि जीव अपने भाव रूप से परिणमित होता है, वो पुद्गल के भाव रूप से परिणत नहीं होता, यानी कर्म रूप से या कर्म की जो अवस्थाएं होगी, उदय है, उपशम है, क्षोपशम है, क्षय है, उस रूप जीव परिणमित नहीं होता है, जीव अपने भाव रूप से परिणमित होता है। ये बात ख्याल में रखकर हमको ये आगम के या कर्णान योग के ग्रंथ को पढ़ना है। नहीं तो देखो, हाँ स्वतत्व है उसके, असाधारण भाव है। औदयिक आदि जीव के अपने तत्व है, उसके अपने भाव है, उसके अपनी पर्याय है वो। परंतु यहाँ ऐसा नाम क्यों दिया फिर, जीव की पर्याय तो उसका नाम क्यों दिया? तो वहाँ कर्म में ऐसी अवस्थाएं सामने उसी समय पाई जाती है जब यहाँ जीव के राग द्वेष आदि भाव चल रहे, वहाँ वो औदयिक यानी कर्मों का उदय पाया जाता है। चारित्रमों की बात करेंगे अभी, तो इसलिए उसका नाम औदयिक भाव लिखा। इसलिए यहाँ क्या कहते, देखो, उनमें से कर्मोदय जनित भाव का नाम औदयिक है, कर्मों के उपशम से उत्पन्न हुए भाव का नाम उपशमिक है। ये उत्पन्न हुए ऐसा शब्द आता है ना, और क्षय से उत्पन्न हुए भाव, तो जैसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ, तो कर्म बलवान हुआ। ये भाषा है और उसको हमको सही ढंग से समझनी चाहिए। आगे लिखा है, कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाला जीव का भाव क्षायिक है। ये अनादि से ही वो निमित्ताधीन दृष्टि है और शास्त्र पढ़कर ये दृष्टि बलवान बनाता है। जीव स्वयं अपनी बुद्धि से स्वयं सोता है, लिखा है ना विप्रोच समय सार में। नहीं आपने अभी सुना नहीं है, अभी अपनी गाथा चल रही है समय सार में। वहाँ क्या है, वो चद्दर ओढ़ के सोया है, स्वयं अज्ञानी होता हुआ ऐसा लिखा है। जैसे परभावों को अपना मानकर वो स्वयं अज्ञानी होता है, तो स्वयं होता है कहाँ? तो ये शास्त्र पढ़कर भी जो अज्ञानी है, निमित्ताधीन है, वो उसी दृष्टि को पुष्ट करता है, क्योंकि उसको अपनी मान्यता नहीं बदलनी है, परंतु अपनी मान्यता के अनुसार शास्त्रों का अर्थ लगाना है। हमें तो शास्त्रों में जो अभिप्राय, जिस अभिप्राय से लिखा है, जो सही है, उसके अनुसार अपना निर्णय करके मान्यता करनी है। तो ये अज्ञानी जीव है, वो अपनी मान्यता बदले तो उसको थोड़ा, उसका मान कषाय थोड़ा हीन हो जाएगी, तो इसलिए वो शास्त्रों के अर्थ उलट पुलट बताता रहता है। अपना तो अकल्याण करता ही है, अभी यहाँ उपदेश देगा तो दूसरों का भी हो जाता है उसके साथ। एक शायिक है, कर्मों के उदय होते हुए भी, ये भी अच्छी परिभाषा है उपशमक की। क्या है, कर्मों का उदय होते हुए भी जो जीव गुण का खंड यानी अंश उपलब्ध रहता है, वहां कर्मों का उदय है, फिर भी यहाँ जीव का भाव कुछ प्रकट है। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है, चल रहा है, फिर भी यहाँ जीव का मति ज्ञान प्रकट है, पूरा ढक नहीं गया है। उदय होते हुए अगर जीव का वो गुण प्रकट नहीं होता तो हम कहेंगे ये औदयिक भाव है, और जो प्रकट है उसको कहेंगे क्षोपशम भाव है, वह क्षोपशमिक भाव है। अब मुझे कहना, ये मति ज्ञान जो है वो कौन सा भाव है? क्षोपशमिक भाव है, तो क्षोपशमिक भाव है। अब हम औदयिक किसको कहेंगे, औदयिक अज्ञान किसको कहेंगे? हाँ, देखो अभी हमारा जो ज्ञान का अंश प्रकट नहीं है उसको औदयिक अज्ञान कहेंगे। अभी हमें केवल ज्ञान नहीं है, वो हमारा उस संबंधी अज्ञान है ना। तो जो जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो हमारा औदयिक अज्ञान है, और जो ज्ञान प्रकट है अभी हमारा, वो छद्मस्तों की बात चल रही है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान है, और केवली के बारे में तो वो क्षायिक ज्ञान कहलाएगा। ये आएगी बातें, आगे पांच भावों की बातें आएगी। जो पूर्वोक्त चारों भावों से व्यतिरिक्त यानी उनके अलावा जीव और अजीवगत भाव है, ये पारिणामिक भाव कौन से द्रव्य का है? सभी, इसलिए क्या लिखा, जीवगत भाव और अजीवगत भाव। सभी द्रव्यों का अपना अपना जो स्वभाव है, बिना किसी निमित्त के जो होता है, जो अनादि अनंत है, वो पारिणामिक भाव है। यहाँ क्या इसीलिए लिखा, जीव और अजीवगत भाव है वो पारिणामिक भाव है. ये सिंपल उन्होंने हर एक की परिभाषा कर दी. पुद्गल में पारिणामिक भाव होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं है, होगा या नहीं होगा? ये निर्णय नहीं है. प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव जो है कि नहीं है. पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतन ये सब स्वभाव अनादि से कौन से कर्म के कारण है के जीव के कारण है? हाँ तो वो उसका पारिणामिक भाव है.
देखो इन शॉर्ट स्वभाव भाव को पारिणामिक भाव कहा है. तो प्रत्येक द्रव्य को स्वभाव होगा कि नहीं अपना अपना? अगर अपना अपना स्वभाव नहीं होगा तो दो द्रव्य एक जैसे हो जाएंगे. अभी उनके नाम ही अलग अलग है, कैरेक्टर्स ही अलग अलग है, स्वभाव ही अलग अलग है, इसलिए तो अलग अलग द्रव्य कहे गए. इसलिए उनके स्वभाव को ही पारिणामिक भाव कहा है. तो आपका पारिणामिक भाव कौन सा है?
मेरा है वो जीव का ऐसा कहो. अब शंका, उक्त चार भावों में से यहाँ पर किस भाव से अधिकार या प्रयोजन है? ये जो हम भावानुगम पढ़ने जा रहे हैं, उक्त चार भाव कौन से चार भाव लिए? हाँ उदय का उपयोग. पांच क्यों नहीं लिए, चार ही क्यों लिए? बोलो भाई, अभी देवेंद्र भी बताएंगे. अरविंद भी आप मदद करना उसको. यहाँ नाम स्थापना द्रव्य भाव की बात चल रही है. उक्त चार प्रकार के भाव जो बताए ना, तो उसमें से क्योंकि आपने चर्चा तो इतनी की, अभी यहाँ किसको लेना? क्योंकि अगर पांच भाव में से किसको लेते तो पूछ लेते वो पांच भाव में से किसकी चर्चा है. ये पांचों ही भाव कौन से खाते में डाले थे हमने, उसका नाम क्या था? पांचों भाव जो, ये तो द्रव्य की बात है. भाव निक्षेप के हमने दो भेद किए थे, आगम भाव और नो आगम भाव. तो ये नो आगम भाव में चले गए थे. ये नो आगम भाव निक्षेप में जो है, नो आगम भाव भाव निक्षेप, उसके ये पांच भाव ये उसके भेद थे, बराबर. तो अभी हमने पहले नाम भाव लिखा देखा, स्थापना भाव देखा, द्रव्य भाव देखा और भाव भाव देखा. इन चार भावों में से यहाँ कौन सा प्रयोजन है? तो उसका समाधान है यहाँ नो आगम भाव भाव से अधिकार है. चार निक्षेप में से नो आगम भाव निक्षेप की बात है यहाँ. ये चार भावों का अर्थ क्या है यहाँ? नाम स्थापना वाला, नाम स्थापना द्रव्य और भाव. हाँ भाव में से नो आगम भाव, तो उसमें से कौन सा अधिकार यहाँ चल रहा है? तो नो आगम भाव भाव निक्षेप. शंकाकार पूछता यह कैसे जाना जाता है, उसका समाधान 14 जीव समासों के लिए अनात्मभूत नामादि शेष भाव निक्षेपों से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है. इसी से जाना जाता है कि यहाँ नो आगम भाव भाव निक्षेप से ही प्रयोजन है. 14 जीव समास याद है कौन से? हाँ. वो मार्गणा हो गए. चौदह जीव समास दोनों प्रकार से आते हैं. हाँ एक इंद्रिय के दो भेद, बादर सूक्ष्म. हाँ और पर्याप्त ये पर्याप्त एक साथ कर दो बाद में. हाँ और पंचेंद्रियों के संगी असंगी, ये जो सात भेदों के जो है पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे तो ये 14 जीव समास. या 14 जीव समास और किसको कहा है? 14 गुण स्थानों को भी 14 जीव समास कहते हैं. तो उनके ये रेगुलर हाँ यहाँ ऐसे कोई बात लिखी नहीं हुआ है, परंतु वो हो गए या गुणस्थानों की बात हो गई, यहाँ स्टेटमेंट क्या है? हाँ, उनके लिए अनात्मभूत। अभी अनात्मभूत किसको कहना? जो उनके नहीं है वो अनात्मभूत। आत्मभूत यानी अपना, अनात्मभूत यानी उसका अपना नहीं, वो अनात्मभूत। ये अनात्मभूत पहले हमने अनात्मभूत लक्षण हमने सुना था ना, कहाँ सुना था याद है? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण, नहीं समझे? अच्छा आत्मभूत लक्षण यानी उसका अपना कोई लक्षण हो तो आत्मभूत लक्षण होगा। हाँ, जैसे जीव का आत्मभूत लक्षण क्या है? ज्ञान है, दर्शन है वगैरह। अभी किसी व्यक्ति विशेष को हमको बुलाना है तो हम दूर से कहेंगे वो चश्मे वाले हैं, ये वो काठी वाले हैं, वो टोपी वाले हैं, वो क्या होगा? उनका अनात्मभूत लक्षण। ये संयोग में जो है ना देवदत्त, वो इसमें आता है, वो लकड़ी वाला दंडी कहा उसको, दंड धारण करता है वो दंडी वाला, या हम कहेंगे छतरी वाला कोई है, तो ये उसका संयोग की अपेक्षा हमने उसको लक्षण कहा, तो ये अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत अनात्मभूत किसको कहना वो बात है ना। देखो तो 14 जीव समासों के लिए अनात्मभूत ऐसे कौन है? अनात्मभूत नामादि शेष भाव निक्षेप। नामादि शेष भाव निक्षेप है नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, हाँ, और वो आगम वाले भाव निक्षेप। ये यहाँ के जो छोड़कर वो बाकी शेष, शेष में बाकी आ गए। यहाँ हमने कहाँ से प्रयोजन है? अपना नो आगम भाव से प्रयोजन है। इनको छोड़कर इनके अलावा जो अन्य निक्षेप है उनका यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। इसी से जाना जाता है कि यहाँ नो आगम भाव, भाव निक्षेप से ही प्रयोजन है। ये जीव के जो असाधारण भाव है उन्हीं से यहाँ प्रयोजन है, अन्य से यहाँ प्रयोजन नहीं है। शंका, यहाँ पर तीन ही निक्षेप होना चाहिए क्योंकि नाम और स्थापना में कोई विशेषता नहीं है। ये कहते हैं नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर तीन ही निक्षेप घटित होते हैं, चौथा निक्षेप नहीं घटित होता। नाम और स्थापना मिलकर एक कर दो ऐसा कहते हैं। तो उसका उत्तर नहीं, क्योंकि नाम निक्षेप में नामवंत द्रव्य के अध्यारोप का कोई नियम नहीं है। क्या कहते हैं? नामवंत द्रव्य ने जिसका नाम रखा है वो नामवंत द्रव्य उसका अध्यारोप का कोई नियम नहीं है ने? किसी भी द्रव्य का कोई भी नाम रख सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि कौन सा नाम रखे। तो नाम निक्षेप के लिए उस द्रव्य में वो कुछ गुण होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए तथा नाम वाली वस्तु की स्थापना होनी ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वो ऐसा हुआ है ना, उसको ऐसा करो, ऊपर एक मात्रा दे दो। क्या कहते हैं? जो नाम किसी वस्तु का रख दिया इसलिए उसकी स्थापना करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एवं स्थापना के समान नाम निक्षेप में आदर और अनुग्रह का भी अभाव है। जैसे हमने मूर्ति में स्थापना की, मंदिर जी में हमने मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना की, तो स्थापना की तो हम उनके साथ भगवान महावीर जैसा उनके पूजा करते हैं, साक्षात अरिहंत है, साक्षात महावीर भगवान विराजमान है, इस तरह से हम जो व्यवहार जो है पूजन करना, नमस्कार करना आदि जो है वो करते हैं उसके साथ। यानी वहाँ आदर और अनुग्रह, जहाँ स्थापना निक्षेप होता है वहाँ उसके साथ यथा योग्य आदर अनुग्रह जो कुछ है वो होता है, परंतु नाम किसी का महावीर रख देने से वैसा आदर अनुग्रह नहीं होता। ये नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर है। फिर इसको पढ़ते, स्थापना के समान नाम निक्षेप में आदर और अनुग्रह का भी अभाव है। अनुग्रह यानी वो सानुग्रह के ना, उपकार के, आभार, उसको अनुग्रह कहते। अनुग्रह संस्कृत शब्द है, अनुग्रहितास्मि कहते ना, नहीं थैंक यू कहने के बदले क्या कहते हैं, अनुग्रहितास्मि, मैं आपकी आभारी हूँ, ऐसा ये अनुग्रह। इसलिए दोनों निक्षेपों में भेद है ही, कहाँ भी है, ये मूल गाथा प्रस्तुत करते हैं कि दोनों निक्षेपों में भेद है हूँ बताने वाली, एक नंबर की ऊपर बताते हैं अब। हाँ, दोनों एक साथ है, एक साथ पढ़ेंगे फिर दोनों का अर्थ देखेंगे। अपिद आदर भावो अनुग्रह भावो य धम्म भावो य ठवणाये कीरन्ते न होन्ति नाममिये येदु नामिनि धम्मु वयारो नामं ठवणाय जस्य तं ठविदं तद्धम्मेण विजानसु सुनाम ठवणानम विशेषम। ठवणाय ने स्थापना, ऊपर दो तीन बार आए ना ये, अभी इसका अर्थ देखते हैं। विवक्षित वस्तु के प्रति आदर भाव, अनुग्रह भाव और धर्म भाव स्थापना में किया जाता है। जिस वस्तु में हमने अभी भगवान की स्थापना की है मूर्ति में, तो उनके प्रति आदर भाव, अनुग्रह भाव, धर्म भाव वगैरह होता है। परंतु ये बातें नाम निक्षेप में नहीं होती। किसी का नाम महावीर रखो या अरिहंत रखो या सर्वज्ञ भी रखो, तो उनके साथ वो भावना नहीं रहती अपनी। नाम में धर्म का उपचार करना नाम निक्षेप है, और जहाँ उस धर्म की स्थापना की जाती है वह स्थापना निक्षेप है। विशिष्ट धर्म, विशिष्ट गुण की हमने वहाँ स्थापना की है, वो स्थापना निक्षेप, और वो गुण का खाली हमने नाम रख दिया किसमें, तो वो तो नाम निक्षेप हो गया। इस प्रकार उस धर्म के विषय में भी नाम और स्थापना की अविशेषता अर्थात एकता को मत जानो, यानी नाम निक्षेप अलग बात है और स्थापना निक्षेप अलग बात है, दोनों में ही भेद है, ये यहाँ बताना चाहते हैं। क्योंकि शंकाकार ने शंका उठाई थी, नाम और स्थापना दो नहीं है एक ही, इसलिए तीन ही निक्षेप कर दो, तो इसका समाधान हो गया। इसलिए निक्षेप चार प्रकार का ही है, ही लगाया, यह बात सिद्ध हुई। फिर शंका, पूर्वोक्त पांच भावों में से यहाँ किस भाव से प्रयोजन है। अब यहाँ पांच भाव यानी वो औदयिक आदि पांच भाव लेना है। पहले जब चार भावों की बात की थी तब नाम स्थापना वगैरह की बात थी। समाधान, पांचों ही भावों से प्रयोजन है, यानी यहाँ जो अभी भावानुगम में हम इन पांच भावों की चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवों में पांचों भाव पाए जाते हैं। फिर शंका, शेष द्रव्यों में तो पांच भाव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्यों में औदयिक और पारिणामिक इन दोनों ही भावों की उपलब्धि होती है, और धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश और काल द्रव्यों में केवल एक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है। हाँ, क्या कहा, पुद्गल में कौन से भाव है? हाँ, आप बताओ। देखो, वहाँ अन्य द्रव्य के निमित्त पने से जो भाव बनते हैं उसके वो औदयिक कहेंगे, कर्म ज्ञानावरणादि कर्म रूप जो परिणाम होता है वो जीव का निमित्त पड़ता है ना उसमें। अभी हम कर्म के पुद्गल कर्म के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं उसको औदयिक कहा। अब जीव के परिणामों के निमित्त से जो कर्म में परिणमन होगा उसको क्या कहेंगे, उसकी भी वो उपाधि है कि नहीं है कर्म के। अरे हमें कर्म की उपाधि है तो कर्म के लिए जीव की उपाधि है वो। भाव ही नहीं पर्याय, पारिणामिक भाव तो स्वभाव भाव है। मानते तो मिथ्या तो हो जाता है। उसको कुछ सुख दुख होता नहीं है उससे, फिर भी वो उसका स्वभाव भाव नहीं है, उपाधि है उसके लिए, है ना। ये परमाणु रूप रहना उसकी वो स्वभाव भाव है। समाधान, भाव नाम जीव के परिणाम का है। अब यहां भावों की बात चल रही है, यहाँ परिणाम को भाव कहा है, जो कि तीव्र मंद निर्जरा भाव आदि के रूप से अनेक प्रकार का है। यह निर्जरा भाव पर ये दृष्टांत देकर समझाया है। निर्जरा भाव जो है वो तीव्र भी और मंद भी होते हैं। मंद भावों से मंद निर्जरा होगी, तीव्र निर्जरा भाव से यानी जो जहाँ निर्जरा ज्यादा है, जिन भावों से जिसको हम कहते विशुद्धि ज्यादा बढ़ गई तो उसको हम तीव्र भाव कहेंगे। यानी कहीं कहीं निर्जरा कम होती है और कहीं कहीं असंख्यात गुणा होती है, तो अनेक प्रकार का है। उनमें तीव्र मंद नामक भाव है, ये निर्जरा भाव कहा उसमें। जैसे चौथे गुणस्थान वाले को कम निर्जरा है, पांचवे वाले को, सातवे वाले को या ऊपर श्रेणियों में निर्जरा ज्यादा है तो उसको मंद या तीव्र भाव कहेंगे। वही बात यहाँ गाथा के द्वारा उन्होंने ऊपर बताई है। ये तीसरी और चौथी हम एक साथ पढ़ेंगे, उसका एक साथ ही यहाँ अर्थ बताया है। समुत्पत्ति सावय हृदय अनंत कमसे दंशन मोह खवये कसाय उवसामये उवसंते खवये अखीण मोहे जिने अण्यमा भवे असंखे जा तव विवरी दो कालो संखे ज गुणाए सेड़िए। देखो जहाँ गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, ऐसे यहाँ कुछ स्थान बताए हैं। क्या आपने अन्य कहीं ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ असंख्यात गुणा निर्जरा पाई जाती है? मंजू बेन, हाँ हाँ, नहीं भले वो गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ होती है मैंने नहीं पूछा। ये असंख्यात गुणा निर्जरा के स्थान ऐसे हम अलग अलग, हाँ नहीं तत्वर सूत्र पढ़े है? देखो पहले इसका अर्थ करते फिर आपको याद आएगा। सम्यक्त की उत्पत्ति में ये पूरम में पढ़ लेती है फिर दोबारा इसका अर्थ करेंगे। सम्यक्त की उत्पत्ति यानी प्रथम उपशम सम्यक्त जब पहले प्राप्त होता है तब श्रावक में विरत में वो में करना, में के ऊपर रफार नहीं चाहिए। अनंतानुबंधी कषाय के विसंयोजन में दर्शन मोह के क्षपण में कषायों के उपशामकों में उपशांत कषाय में अभी बीच में एक रह गया उनका क्षपकों में डालना। क्योंकि ऊपर चौथी गाथा के स्टार्टिंग में खवये शब्द है उसका अर्थ यहाँ उन्होंने नहीं किया है। खवये या क्षीण मोह किया है ना, तो क्षपकों में और फिर क्षीण मोह में और जिन भगवान में नियम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, यानी सम्यक्त की उत्पत्ति में जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक में होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत में यानी संयतों में होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले को होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह के क्षपण में होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा कषायों के उपशामक जो है उपशम श्रेणी वाले उसमें होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा उपशांत कषाय ने ग्यारहवा गुणस्थान वाले को होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षपकों में होती है क्षपक के गुणस्थानों में, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह में होती है और उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिन भगवान में होती है। यहाँ लिखा नहीं है परंतु ग्यारहवा में स्थान पर समुद्घात वाला केवली लेना, जिन भगवान में ही दो लेना, एक सामान्य केवली और एक समुद्घात केवली। ऐसे असंख्यात गुणा निर्जरा के 11 स्थान हैं, परंतु यही 10 स्थान बताने वाला तत्वार्थ सूत्र में भी सूत्र है। 9वें अधिकार में 45 नंबर का सूत्र है, देखना आप। देखो वहां भी लिखा है सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपक उपशमक उपशांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाहा क्रमशः असंख्येय गुण निर्जरा। ये तत्वार सूत्र का सूत्र है, वही बात यहाँ गाथाओं के द्वारा बताई उन्होंने। देखो इसमें नंबर डालना, सम्यक्तों की उत्पत्ति में एक नंबर डालना, दो नंबर श्रावक, तीसरे नंबर पर विरत में, चौथे नंबर पर अनंतानुबंधी का विसंयोजक, पांचवा नंबर है दर्शन मोह का क्षपण, छठे में कषायों के उपशामकों में, सातवें नंबर पर उपशांत कषाय में, आठवें नंबर पर क्षपकों में लिखना, हमने जो ऐड किया ना उसको आठवां नंबर देना, नौवें नंबर पर क्षीण मोह में, और दसवें नंबर पर जिन भगवान में नियम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये ख्याल में ना, ऊपर जो गाथा में भी ऐसे नंबर आप डाल सकते, उसी का अर्थ यहाँ नीचे हिंदी में विस्तार से बताया। किंतु अभी इसकी विशेषता बता रहे, किंतु उक्त गुणश्रेणी निर्जरा में असंख्यात गुणश्रेणी कर्म क्रम की अपेक्षा काल का प्रमाण विपरीत अर्थात उत्तरोत्तरहीन है। क्या बताना चाहते हैं? यहाँ गुणश्रेणी निर्जरा है ने, पहले एक समय प्रबद्ध इतनी निर्जरा होती थी, अब यहाँ असंख्यात समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, असंख्यात असंख्यात, और वे भी ऐसे गुणश्रेणी रूप रचना होती है। ये पंचलब्धि के प्रकरण में भी हमने इसका विस्तार से स्वरूप देखा था और पहले भी देखा था, यानी जब मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है जीव तो अपकर्षण होता है, ऊपर के जो परमाणु है वो नीचे आते हैं अधिक मात्रा में। सामान्य से तो एक समय प्रबद्ध का बंध होता है और एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, परंतु यहाँ जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है वो उसके अपकर्षण के द्वारा सत्ता में पड़े हुए कर्मों में से बहुत सारी मात्रा में कर्म नीचे प्रति समय असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा आते, और जो उदय रूप है वहाँ पहले निषेक में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग तो वहाँ है ही निषेक, और उसमें और ऊपर आसे आकर ये मिलते रहते हर समय, नीचे के निषेक में कुछ परमाणु मिले उससे असंख्यात गुणे निषेक परमाणु दूसरे निषेक में, उससे असंख्यात गुणा तीसरे में, उससे असंख्यात गुणा चौथे में, इसको कहते पंक्तिबद्ध ही ऐसी गुण श्रेणी होती है, गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप रचना। गुणश्रेणी का अर्थ क्या है? गुणित प्रमाण में, असंख्यात गुणित प्रमाण में ये जो पंक्ति रूप रचना होती है, ये पहले समय में इतना दिया, अब ये दिया हुआ तो ये तो निकल जाएगा उदय रूप होकर, दूसरे समय में इससे असंख्यात गुणा द्रव्य यानी परमाणु नीचे आएंगे, इस तरह से ये निर्जरा चलती रहती है। तो चौथे गुणस्थान वाले की जितनी निर्जरा है, ये निर्जरा होने का प्रमाण तो ये असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, अभी हमने ये दस स्थान इसमें देखे, परंतु लगाकर आगे क्या लिखा, ये जो गुणश्रेणी का जो आयाम यानी जो काल कहते इसका, तो नीचे के गुणस्थानों में बड़ी बड़ी होती है, अनेक निषेकों में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लेते हैं 100 निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जितना ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जाते हैं तो कम निषेकों में ज्यादा माल दिया जाता है, कम बच्चे अधिक सुखी कहते ना, किसी को 8 बच्चे हो तो उसका माल तो 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 2 ही होगा तो 2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये गुणश्रेणी का जो आयाम है जिसको काल कहते हैं, तो कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप रचना होगी, तो ये काल जो है वो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में छोटा छोटा होता है, यानी उसमें गुणश्रेणी यानी अपकर्षण होकर परमाणु ज्यादा आते हैं नीचे, और वो कम निषेकों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी अधिक अधिक मात्रा में निकल जाते हैं, और नीचे नीचे के गुणस्थानों में गुणश्रेणी बड़ी बड़ी होती है, तो अपकर्षण होकर जो पर निषेक जो माल आएगा वो थोड़ा होता है, यानी निकल जाने वाली जो है उनकी संख्या कम है। अभी जो हमने चौथे की अपेक्षा पांचवे की निर्जरा ज्यादा है, पर गुणश्रेणी का जो आयाम काल है वो छोटा है, ऐसे हर एक गुणस्थान में लेना, जैसे आठवें गुणस्थान से नौवे वाले की उसमें भी लगा लेना, गुणश्रेणी की लंबाई घटती जाती है। आगे दिया है क्या अर्थ? चौथे में गुणश्रेणी कब होती है? जब औपशमिक सम्यक तो होता है तब, इसलिए वहां लिखा था सम्यक्त्व की उत्पत्ति में लिखा है, वो गुणश्रेणी रूप चौथे गुणस्थान में सतत नहीं रहती है, पांचवे से सतत रहती है, परंतु जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, हाँ तब ये गुण श्रेणी होती है। विशेष बात कल करेंगे हम। 9:45 जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।